अब आगे वो बात है जो कि बहुत तकलीफ दे है, जब देखिए आपको कोई इल्जाम लगा दे ना, झूठा इल्जाम, तोहमत, कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पे वो इल्जामात, वो इतराजात जो के मुशरिकीन करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उनकी बात की गई है और उनको अल्लाह ताला ने जवाब दिया। वह ईजा बदलना आयत मक्या न आयतिन, जब हम बदल देते हैं एक आयत को दूसरी आयत की जगह, क्या मतलब है? यानी कुरान पाक जब उतर रहा था ना, तो ऐसे उतरता था कि पहले एक आयत आई है, फिर दूसरी दफा कोई हुक्म उसकी जगह दूसरा आ जाता, फिर कोई और हुक्म आता, जैसे तदरीज का जिसको कहते हैं, एक तरीका एक कार है। मिसाल के तौर पे शराब है, पहले शराब को कहा गया कि ये तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, इसमें गो के कुछ फायदे भी हैं, फिर कहा गया आप शराब को ना पियो जिस वक्त कि तुम्हें नमाज के करीब, नमाज के टाइम पे नहीं शराब पीनी, फिर उसके बाद शराब को हराम कर दिया गया, तदरीज से ग्रेजुअली ग्रेजुअली हुक्म दिया गया। इसी तरह मसलन वो लोग पूछते कि आप बताएं कि जो है कयामत कब आएगी, तो कभी एक तरह से उसका जवाब दिया गया, कभी दूसरी तरह से जवाब दिया गया। अब वो या कोई हुक्म है, एक आ गया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया और उसकी जगह दूसरा हुक्म दे दिया गया, तो वो कहने लगे कि ये कैसे हैं, जब भी कोई इस तरह एक आयत की जगह दूसरी आयत आ जाती थी, नासिख और मनसूख का आपको बताया गया कि एक आयत ने दूसरी को मनसूख कर दी, फिर दूसरा हुक्म आ गया, उसके पीछे हिकमत होती थी कि कुरान जो है ये दीन इस्लाम कयामत तक के लिए, इसके बाद कोई और दीन अल्लाह की तरफ से नहीं आना, कोई और पैगाम नहीं आना, तो ये फाइनल है। अब इसके अंदर फाइनली जो कयामत तक के लिए हुक्म था वो रखा गया, बाकी जो लोगों की बाज दफा तरबियत के लिए, बाज दफा उनकी एक उसमें कोई और हिकमतें होती थी कि एक हुक्म दिया जाता था, फिर उसके बाद उस हुक्म को वापस लेके दूसरा हुक्म दिया जाता, ताकि लोग ग्रेजुअली उससे यूज्ड टू हो। ठीक है, अब यहूदी जो थे वो तो ये कहते थे कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी वो फाइनल थी, अब इसके बाद कोई और क्यों आ गई, और जो मुशरिकीन मक्का थे वो भी कोई इस तरह के इतराजात करते थे कि ये आज इन्होंने एक बात कही है, कल दूसरा हुक्म आ गया, तो ये तो लगता है कि खुद ही अपनी तरफ से बना लेते हैं। तो उसकी बात यहाँ पे की गई कि जब हम एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आते हैं, दूसरा हुक्म ले आते हैं एक को बदल के, वल्लाहु आलम बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह ताला खूब जानता है उसको जो वो उतारता है, अल्लाह को पता है कि वो क्या उतार रहा है, अल्लाह ताला को पता है किसको कैंसिल करना है बाद में, किसको नहीं करना। देखिए नसख की भी ना, कैंसिलेशन की भी दो किस्में, एक नसख मा तिलावा है कि कभी तो अल्फाज मनसूख कर दिए जाते, तिलावत उसके जो जो अल्फाज हैं वो खत्म कर दिए जाते, और कभी हुक्म के साथ मनसूख होता, अल्फाज होते हैं मगर हुक्म मनसूख कर दिया जाता है, सिर्फ हुक्म कैंसिल कर दीजिए, अल्फाज अभी भी हैं, जैसे मैं आपको कभी कभी बताती हूँ कि ये मनसूख हो गया वह हुक्म। ठीक है, कभी एक की जगह दूसरा ले आया जाता था। तो 23 साल में कुरान पाक उतरा, पहले बाज जगह पे हर एक हुक्म नहीं, और ये दीने इस्लाम के जो बुनियादी जो बेसिक अहकामात या बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो कभी नहीं चेंज हुए। हाँ शरीयत के अंदर कहीं कहीं चेंजेस आए कि ये अब इस तरह से होगा, अब इसके अंदर ऐसे, जैसे शराब की हुरमत का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फिर जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक और लोगों को उससे यूज टू करने के लिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली चीजों को लाया गया। तो बहुत सारी हिकमतें हैं इसके पीछे, इसके अंदर हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते कि कैसे नासिख मनसूख हुआ, मगर एक की जगह जब दूसरा हुक्म आया, इतनी बात आप समझ लें। तो क्या होता था, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु आलम हम बिमा युनज़िलु, अल्लाह को पता है जो वो उतारता है, तो वो क्या कहते थे, कालू इन्नमा अंता मुफ्तरिन, वो कहते थे तू तो खुद ही घड़ के ले आता है सारा कुछ। अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया बल अक्सरहुम ला यालमून, इनमें से अक्सरियत को कोई इल्म ही नहीं है, इनको नहीं पता, इनके यानी इनको पता ही नहीं है कि क्या हिकमतें हैं, क्यों अल्लाह ताला ने इसको मनसूख किया, क्यों दूसरी हुक्म को लाया गया, ये जानते ही नहीं है। इस वजह से ये नुक्ते निकालते हैं, इस वजह से ये ऐसी बातें करते हैं, इतराजात करते हैं। और आप इमेजिन करें कि हमारे जैसे लोगों को जिनके कोई हैसियत नहीं है, उनको भी कोई कह देना, ये खुद ही घड़ घड़ के लाती रहती है बातें, खुद ही अपनी बनाती रहती है बातें, ऐसे मैं कितना दुख हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना बड़ा बोहतान, इतना बड़ा इल्ज़ाम कि खुद ही घड़ लेते हैं कुरान को, कोई अल्लाह की तरफ से नहीं आया। देखो ना, खुद ही बदल बदल के ले आते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। तो ये कितनी बुरी बात थी वो जो वो कहते थे, और कितनी तकलीफ दे बात थी। और अल्लाह ताला जानता है जो वो नाजिल करता है, यानी अल्लाह ताला का कलाम है, उसको पता है कि उसने क्या नाजिल करना और किस वक्त नाजिल करना है। तुम कौन होते हो इतराज करने वाले? कुल नज़लहू रूहुल कुदुस, कह दीजिए आप ए नबी, इनको जवाब दें कि मैं खुद नहीं घड़ के लाता, ये नाजिल किया है इसको रूहुल कुदुस ने, मैं रब्बी का तुम्हारे रब की तरफ से, बिल हक, साथ हक के, सच्चाई लेके रूहुल कुदुस उतरे हैं। रूहुल कुदुस कौन है? जिब्राइल अलैहि सलाम, पाक रूह। और इनको ही रूहुल अमीन भी कहा गया दूसरी जगह, अमानतदार रूह, अमानतदार। देखिए फरिश्ते सारे ही अमानतदार हैं, लेकिन खास तौर पे ताकीद के लिए कहा गया, बताया गया कि इस कुरान की सेंसिटिविटी इतनी है कि इसको लाने वाला भी वो फरिश्ता है जो अमानतदार फरिश्ता है, जो मुकद्दस फरिश्ता है, पाक फरिश्ता है। ये लकब है जिब्राइल अलैहि सलाम का। वैसे तो सारे ही फरिश्ते पाक हैं, मगर इनको खास तौर पे ये कहा गया। और नज़ला, नज़ला युनज़िलु, तंजील का मतलब होता है ग्रेजुअली नाजिल होना। एक अनज़ला होता है, इन्ना अनज़लना आयतन, हमने नाजिल किया। अनज़ल का मतलब होता है एक ही दफा नाजिल करना, नज़ला का मतलब थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़ा थोड़ा करके 23 ईयर्स में जिब्राइल अलैहि सलाम, ऑलमोस्ट 23 ईयर्स थे उसमें जिब्राइल अलैहि सलाम इसको लेकर उतरे तेरे रब की तरफ से हक के साथ। एक फिरका ऐसा भी दुनिया में गुजरा है जिसने कहा कि ये जिब्राइल अलैहि सलाम के ही अल्फाज हैं, अल्लाह ताला के अल्फाज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला तो कलाम ही नहीं करता और उसने जिब्राइल अलैहि सलाम के दिल में डाल दिए तो उनके वर्ड्स हैं। ऐसा नहीं है, ये अल्फाज अल्लाह के हैं। जिब्राइल अलैहि सलाम की ड्यूटी सिर्फ क्या है? इसको लेकर उतरना, और इसमें हक है, ये हक के साथ उतरे हैं, सच्चाई है। लियुसब्बितल्लदीना आमन, किस लिए ये उतरा? नंबर 1, ताकि ईमान वालों के दिलों को जमा दे, जम जाए उनके दिल, उनके दिल ईमान पे साबित कदम रहे, क्योंकि हालात ऐसे थे और हमेशा ही हालात ऐसे रहे हैं ईमान वालों के लिए कि उनके ऊपर, ईमान के ऊपर जमने के लिए ना उनको जरूरत है किसी चीज की, कि जो जिसकी वजह से वो ईमान पे उनका दिल जमा रहे। और अल्लाह ताला कुरान के साथ दिलों को जमा देता है। जब आप कुरान के ऊपर चलने वाले हों या कुरान को समझने वाले हों, तो आप देखेंगे आपका दिल मजबूत हो जाएगा ईमान पे। ईमान मैंने जैसे अभी बताया ना, ये ईमान बढ़ता कैसे है? इस कुरान के जरिए। तो ये पक्का कर देता है ईमान वालों को, उनके ईमान में आपका भी दिल मजबूत होता है ना। जब आप एक क्लास ही लेते, आपका ईमान कितना बढ़ जाता है? ये कुरान का एजाज है, ये कुरान की तासीर है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने नाजिल किया इस कुरान को आहिस्ता आहिस्ता हक के साथ। लेकिन जैसे जैसे हालात आते जाते थे, आज कुछ हालत है कल कुछ और है, तो उस मुताबिक कुरान उतरता था। अगर अल्लाह ताला एक ही दफा नाजिल कर देता, ना उनको याद रहता, ना उनको वो समझना भी मुश्किल हो जाता, और अमल करना सोचे कितना मुश्किल होता। आप एक रात में कहें कि सारी पे अमल कर लो, ये उनके लिए कैसे, उस सोसाइटी के लिए कितना मुश्किल काम था। ग्रेजुअली ये काम आता है, वो यूज्ड टू हुए उनसे, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको ये तंजील का बड़ी हिकमतें, तो ताकि इनके दिल मजबूत हो जाएं, जम जाएं। वह हुदन और हिदायत है इसमें। नंबर 2 क्या मकसद था इसका? हिदायत, हिदायत राह दिखाना, रहनुमाई, गाइडेंस। तो ये गाइड है। अब हमारे, अल्लाह ताला हमें माफ करे, हमारे लोग ये समझते हैं कि हमें कौन सा गाइड की जरूरत है, हमें गाइडेंस नहीं चाहिए, हमें हम अपनी गाइडेंस खुद ही ले लेते हैं, हमें बड़ा अच्छी तरह पता है क्या करना है क्या नहीं करना, हमें कौन गाइड करेगा? जबकि अल्लाह ताला ने इसको गाइडेंस बना के, मैं इसलिए एक और वर्ड यूज कर रही हूँ, हिदायत नहीं बार बार कह रही, क्यों? इसलिए कि आप कुछ कुछ वर्ड से इम्यून हो जाते हैं, चाहे उनका मतलब पता ना हो, बस हिदायत हिदायत कहते रहे। गाइडेंस कहूंगी ना तो हमें अच्छी तरह पता है व्हाट इज गाइडेंस, जो गाइड करता है, जो लीड करता है, जो किसी रास्ते पे लेकर जाता है, वो उसको गाइड कहते हैं ना। आप किसी को गाइड भी बनाते हैं, ठीक है, आप कहीं नई जगह पे गए, आप वहां पे क्या आपको पता नहीं है, आप वहां पे गाइड लेते हैं, उस गाइड के को आप फॉलो करते हैं, ऐसा ही है ना। अब आप इसी को सोच लें, कुरान ये गाइड है। डोंट यू अंडरस्टैंड दिस, कि ये सिर्फ एक पढ़ने की बात नहीं, वो हमने पढ़ लिया, हाँ तो जी हमें तो सब पता है। भाई सब पता है इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं वी डोंट नीड अ गाइड, जबकि अल्लाह ताला ने इसको गाइड बनाया है। वी हैव टू फॉलो द कुरान, ये गाइड है, इसके पीछे पीछे हमने चलना है, तब ये हमें लीड करेगा, किधर लेकर जाएगा, जन्नत तक। लेकिन बाज लोग अपने आप को इतनी अकलमंद समझते हैं, ये उनको लगता है शायद कि ये अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह ताला ने ऐसे ही उतार दिया, हम तो सारे समझे समझाए बैठे थे, पैदाइशी हमें सब कुछ पता है, हम पैदा हुए ना तो हमें सब कुछ पता है, हमें किसी गाइड की जरूरत नहीं है। यू वॉन्ट टू से दैट? अरे इतनी एहतमाम हुआ इस कुरान को उतारने के लिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के सरदार खुद उतरे हैं, 23 साल तक तकरीबन लेकर उतरते रहे, तो हमारे जैसे लोग आज इस सदी में पैदा होकर ये कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं इसकी। अल्लाह ताला ने फिर क्यों नाजिल किया? अगर हम पहले से ही समझे समझाए थे, पढ़े पढ़ाए थे, हमें सब अकलें पहले से थी, क्या जरूरत थी फिर इसकी? आप ये कहना चाहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, तो ये सारी फिर सारी बेकार एक्सरसाइज थी, नऊजुबिल्ला। ये जिब्राइल अलैहि सलाम का उतरना, ये सब उनको जरूरत थी, हमें क्या जरूरत है? उनके पास तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे, उनके तो सामने थे अल्लाह के रसूल। अल्लाह ने कुरान उतारा इंसानियत के लिए, कयामत तक के लिए, सिर्फ उन सहाबा के लिए नहीं, इसीलिए तो इसको सेव किया गया है ना। अगर इसकी जरूरत बाद वाले लोगों को ना होती तो फिर इसको सेव करने की क्या जरूरत थी? इसको क्यों सेव किया गया? कयामत तक के लिए इसके कोई भी लफ्ज को भी कोई चेंज नहीं कर सकेगा, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा ली। इट मींस कि अल्लाह ताला चाहते हैं ना कि आप तक एज इट इज अल्लाह ताला का कलाम पहुंच जाए, इसलिए इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले लिया। लेकिन आज लोग खड़े होके कितने आराम से कह देते हमें जरूरत नहीं इसको पढ़ने की, हमें सब पता है। इतनी ये नहीं, तुम कहना चाहते हो ये इतनी फालतू चीज है, नाउसो बिल्ला, क्या बोल रहे हो? यानी हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही अल्लाह ने उतार दिया, वो लोग पढ़े जिन्होंने, जो पुराने जमाने के होते थे, हम 21st सेंचुरी के लोग सब कुछ जानते, आज साइंस का दौर है, आज गूगल से पूछेंगे हमने क्या करना है, आज गाइड गूगल को बना लिया, कुरान की जरूरत नहीं रह गई क्या जिंदगी में? सोचें इस बात को कि हम क्या कह रहे होते हैं जब हम इसको रहनुमा नहीं बनाते। वह बुशरा लिल मुस्लिमीन, और बशारत है, खुशखबरी है किसके लिए? लोग कहते हैं खुशखबरियां नहीं देते, डराते रहते हैं डराते रहते हैं, भाई खुशखबरी मुस्लिम के लिए है, सिर्फ मुस्लिम के लिए। मुस्लिम कौन है? असलामा युस्लिमु, इस्लाम, जो मुती हो जाए, जो खुद को सरेंडर कर दे, जो इताहत कबूल कर ले, जो फरमा बरदार हो, उसके लिए खुशखबरियां हैं, ना फरमानों के लिए नहीं है। हम कहते हैं हम करते जो जो मर्जी रहे, हम मनमानियां अपनी करें, हम अपनी मर्जी पे चलें, हमने फरमा बरदारी नहीं करनी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, ये करना है हमने। लेकिन खुशखबरियां हमें आप सुनाते रहो, किस बात की खुशखबरी भाई? खुशखबरी किसके लिए है? सबके लिए नहीं है, लिल मुस्लिमीन है, मुस्लिम के लिए। क्या हम मुस्लिम हैं? मैं वो वाला मुस्लिम नहीं कह रही कि आपको रिलीजन पूछा जाए, आपको ये पूछा जाए आप कौन से रिलीजन फॉलो करते हैं, या आपको ये पूछा जाए आप कौन होते हैं, रिलीजियसली तो आपका मुस्लिम, वो वाला मुस्लिम नहीं, इसका मीनिंग देखें, व्हाट डस मुस्लिम मीन रियली, क्या हम मुस्लिम हैं? वो पता है, ऐसी ऊंटनी जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, उसको ये कहा जाता था। समझ आई? आप इमेजिन करें एक ऊंटनी जिसकी नुकेल उसके अपने हाथ में नहीं, वो फ्री नहीं है, उसके मालिक के हाथ में। मालिक जिधर चाहे खड़ा कर दे, जिधर चाहे चलाए, जब करे तेज कर दे, आहिस्ता करे, बिठाए, कुछ करे, उसकी नुकेल कंट्रोल उसका किसके हाथ में है? उसका कंट्रोल उसके मालिक के हाथ में है। क्या मेरा और आपका कंट्रोल हमने अपने मालिक के हाथ में दिया है कि जैसे चाहे हमें, जब कहे उठ जाओ उठ गए, बैठ जाओ बैठ गए, पर्दा करो पर्दा कर लिया, खाओ खाया, नहीं खाओ नहीं खाया, ये खाओ और ये ना खाओ, ये सब हम ऐसे ही फॉलो करते? हम मुस्लिम हैं, हमने इताअत कबूल की है, या हम फ्री समझते हैं अपने आप को? आई एम फ्री, मुझे कोई डिक्टेट नहीं करा सकता, आई डोंट केयर अल्लाह का हुक्म क्या है, नाउज़ बिल्ला, मैंने तो वही करना है जो मुझे दिल करता है। ये वाली जिंदगी है या फर्मा बरदारी वाली जिंदगी? अगर फर्मा बरदारी वाली जिंदगी है तो बुशरा है, वरना कोई बुशरा नहीं है, वरना कोई खुशखबरी नहीं है। वलकद, और अलबत्ता तहकीक, नालम अन्नम यकुलूना, और अब एक और इल्जाम जो उनका था, और अलबत्ता तहकीक, हम जानते हैं कि बेशक वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्नमा यालमुहु बशर, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, अल्लामा युअल्लिमु तालीम क्या होता है, ये जब अल्लामा लाम के मुशद्दत के साथ क्या जब आता है ये लफ्ज, तो क्या मतलब होता है, सिखाना, तालीम सिखाना होता है ना, यो अली मुहू सिखाता है इसको एक इंसान। पहले कहते थे खुद ही घड़ के ले आता है, एक बात भी तो नहीं थी ना, कितनी बातें थी, देखो इसको तो कोई इंसान सिखाता है, अब कौन इंसान सिखाता है, ये बोहतान की भी इंतहा हो गई। कभी कहते कि एक अजमी गुलाम है सफा पहाड़ी के पास, वो ना कुछ चीजें बेचता था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उसके पास बैठ जाया करते थे, कुछ बातें कर लिया करते थे। जैसे होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह लोगों को तालीम देते थे, तबलीग करते थे, दावत का काम करते थे, तो इससे भी बात करते थे। अब ये आदमी सही अरबी भी नहीं बोल सकता था, टूटी फूटी बोलता था, जाहिर अजमी था, उसके ऊपर कह दिया कि ये जी इससे सीख के आते हैं। इसी तरह बाज ने कहा कि एक नसरानी गुलाम है जिसका नाम जबर था, तो वो किसी आदमी का गुलाम था, वो भी मरवा के पास बैठा करता था, उस पर जो है ना मुशरिकीन ने ये एक अफवाह उड़ा दी कि जी ये कुरान ना वहां से सीख के आते हैं, तो ये आके फिर लोगों को सिखाते हैं, और लोगों को कहते हैं अल्लाह की तरफ से उतरा, अल्लाह उससे सीखा। इसी तरह एक मक्का में एक लोहार था, वो भी अजमी था, तो उसके पास आना जाना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये देख के इन्होंने ये मशहूर कर दिया कि जी ये आदमी है, ये इनको सिखाता। इतने झूठ, इतने झूठ, और जब किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगता है ना, हम तो कितने परेशान हो जाते हैं कि इसने झूठ मेरे ऊपर लगा दी, कितने हम दुखी होते हैं। खुद सोचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन लोगों ने नहीं छोड़ा, उनके ऊपर ऐसे झूठे इल्जाम, उनके कोई सर पैर ही नहीं, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया उनके इस इल्जाम का कि लिसानुल्लज़ी कि उसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत करते हैं, जिसकी तरफ ये इशारा करते हैं, उसकी जुबान तो अजमी है, वहाजा लिसानुन अरबी मुबीन, और ये कुरान तो अरबी जुबान में है, साफ अरबी में है, ये किधर के बातें बना रहे हैं? उस बंदा जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, यानी वो जो गुलाम है या जो लोहार था, ये जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, वो अजमी है, उसको तो खुद बोलनी भी नहीं आती अरबी सही। और ये तो वो कुरान है कि जब सूरह कौसर नाजिल हुई थी, हजरत अली ने उसको लेके जाके ना काबा में लटका दिया था लिख के, और काबा में उस वक्त बड़े बड़े शायरों और उनके बड़े बड़े लोगों के कलाम सिर्फ लटकाए जाते थे, तो उस वक्त वहां के बड़े शायर ने लिख दिया कि मा हाजा कलाम उल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं है, ये गेव अप कि मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकता, इसके ऊपर मैं कोई बात ही नहीं कर सकता, ये तो इंसान, देखिए हमें इसलिए कि हमें ये जुबान नहीं ना आती, तो हमें इतनी उसकी फसाद बलागत, उसकी जो इसकी हाइट है ना, उस तक हम पहुंच नहीं पाते। वो लोग समझते थे, तो उन्होंने इसीलिए तो गिव अप कर रहे थे। कितनी दफा तो कुरान ने चैलेंज किए, अच्छा अगर अगर ये खुद बना के लेते हैं तुम भी बना के ले आओ। वो तो उम्मीद है, तो वो बना के ले आओ, तुम तो अपने आप को कहते हो तुम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हो, तुम बना के ले आओ। आज भी देखें, ये गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये कलाम जो है ना, ये मोहम्मद का कलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहते हैं। यानी खुद ही इन्होंने बना लिया, खुद ही ये ले आए। तो भाई अगर वो ले आए तुम भी ले आओ, इंसान का कलाम है ना, तुम भी ले आओ। बल्कि कुरान तो ये चैलेंज करता है कि तुम अकेले का जरूरत है, तुम सारी मखलूक को मिला लो अपने साथ, मैं अंदूनिल्ला, अल्लाह के सिवा सब फरिश्तों जिन्नों सबको मिला लो, तुम भी ले आओ। इसी से पता चलता है, दिस इज अ प्रूफ। अगर वो वाकई ही इस कुरान का मुकाबला कर सकते होते, ये इंसान का कलाम होता ना, तो उन्होंने छोड़ना तो नहीं था। वो तो इतने मुखालिफ, इतने दुश्मन थे, वो उन्होंने जरूर कुछ ले आना था, लेकिन वो नहीं ला सके। और मैंने आपको कई दफा बताया कि मुसैलमा कज़्जाब ने जब कहा, झूठी नबूवत का दावा किया, तो उसने ये कहा मेरे ऊपर भी अल्लाह का कलाम उतरता है। जो वो लेकर आया उसके अपने कबीले वालों ने कहा खुदा का वास्ता ये किसी और के सामने ना कह दे, हमारी भी बेइज्जती कराएगा, ये अपने पास ही रख। लोग जानते थे ना, अहले जुबान थे, उनको पता था कि ये कलाम कुरान का मुकाबला हम नहीं कर सकते, और ये दलील है इस बात की, ये अल्लाह की तरफ से है। तो इसका हर लफ्ज अल्लाह, एक आयत भी कहा बना लो, एक सूरत बना लो, एक आयत बना लो, कुछ तो बना के लाओ, तो वो सीख के आते हैं, तुम भी सीखाओ उनसे। उनको तो अरबी भी बोलनी नहीं आती, तुम कहते उनसे सीख के आके बना लेते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उम्मी थे, खुद कैसे बना सकते थे? 40 साल तक की जिंदगी में तो कभी नहीं ऐसा कलाम किया। और आप इवन आप जब कुरान नाजिल भी हो रहा था, इवन आप देखें हदीस और कुरान में बड़ा फर्क है। अभी आप हदीस अरबी में पढ़ के देखें, आपको पता चलेगा कि इसमें और कुरान में फर्क है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बना सकते थे, ये अल्लाह की तरफ से उतरा है, और अल्लाह ताला ने बड़े तमाम से इसको उतारा। 23 साल तक ही उतरता रहा, जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार इसको लेकर उतरे। जो छोटी बात है ये, हमने तो आज इसको वो कदर ही नहीं थी जो हमें इसकी कदर करनी चाहिए थी, इसको वैल्यू नहीं थी, इसको कुछ समझा नहीं है। कौन सा और ऐसा कलाम है जो आसमानों से उतर आया और जिसको लेकर फरिश्ते उतरे, और फरिश्तों का सरदार लेकर उतरे, और इतने साल तक उतरता रहे, और जो रब्बे कायनात का कलाम कोई कहे? कोई ऐसा इल्म नहीं। आप साइंस पढ़ते, आप मैथ पढ़ते, आप कुछ कितनी फील्ड्स को पढ़ते हैं, कौन सा मजमून ऐसा है जिसके लिए ऐसे आसमानों से उतारा जाए और ऐसे उसके लिए तमाम किया जाए, फिर भी इसको लीस्ट वैल्यू हम देते हैं बाकी उलूम के मुकाबले में। बाकी इल्म के लिए 16-16 साल पढ़ते हैं, एक बच्चा नर्सरी ग्रेड के अंदर आप डालते हैं, वो जवान हो जाता है, वो 25-26 साल का हो जाता है, तब तक भी पढ़ता रहता है। कहां 5 साल, 3-4 साल की उम्र से बल्कि शुरू किया उसने। कोई नहीं कहता कि हाय इतना वक्त देना पड़ेगा, हाय हमसे कमिटमेंट नहीं होती। बच्चों को कमिटमेंट के साथ ही आप स्कूल भेजते हैं ना, फॉलो करते हैं ना सब रूल्स। क्या बात है कि कुरान के मामले में सबसे ज्यादा हमारा रवैया केयरलेसनेस का है, बिल्कुल लापरवाही का, बिल्कुल जैसे कि हमें इसको कोई वैल्यू नहीं है इसकी। क्यों? जबकि हम कहते हैं हमारा ईमान है इसके ऊपर। अगर हम ईमान रखने वालों का ये हाल है, तो जो ईमान ही नहीं रखते उनको क्या शिकायत करें? जो इस अल्लाह की आयात, इस कुरान के ऊपर ईमान नहीं लाते, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देगा। वाला हम आदाब नदी, मैंने आपको क्या बताया, अभी हिदायत की बात बताई ना, ये गाइड है। जो इसके ऊपर इसको मानता ही नहीं, उसको गाइडेंस कहां से मिलेगी? और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते, जो इन एतराजात की बुनियाद पर अगर देखें पीछे आयात के साथ जोड़ के, तो जो एतराज कर रहे हैं वो जाहिर है जो मानते ही नहीं अल्लाह की तरफ से है, तो उनको हिदायत कैसे मिलेगी? कुरान के हक में से पहला हक है कि इसके ऊपर ईमान रखा जाए, मानो कि ये अल्लाह की तरफ से है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिल में। दूसरा हक क्या है, इसको पढ़ो, इसकी तिलावत करो। बाज लोग यहीं तक रुक जाते हैं, बच्चे को पढ़ा लिया, नाजरा पढ़ा लिया, कारी साहब ने बचपन में पढ़ा दी था, उसके बाद उससे आगे तो जाना ही नहीं। हालांकि इससे तीसरा हक है कि इसको समझा जाए। कितने लोग इसको जरूरी समझते हैं, कितने लोग हैं जो आज इसको ये हक दे रहे हैं। चौथा हक इसका ये, इस पे अमल किया जाए। पांचवा हक इसको ये कि इसको आगे पहुंचाया जाए। तो इसकी कौन जरूरत महसूस कर रहा है? बहुत हम कह देते हैं तो हम कहते हैं हाँ हमारा इस पे ईमान, बस, और उसके बाद नाजरा पढ़ लिया, दैट्स इट। इसके बाद हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जानते इसको। और पता नहीं ईमान किस किस्म का है कि जब पता ही नहीं इसमें है क्या, तो ईमान किस पे रख रहे हैं? ईमान तो है ना मान जाना कि जो इसमें है वो सही है बिल्कुल, ये अल्लाह की तरफ से, जबकि यही नहीं पता कि इसमें है क्या, किस चीज पे ईमान रख रहे हैं। तो अगर किसी को कभी भी ये डाउट हो कि पता नहीं ये सही है कि नहीं, पता नहीं सच है कि नहीं, इसका मतलब ईमान नहीं है। पता नहीं अल्लाह की तरफ से है या नहीं, तो इसका मतलब ईमान नहीं है। और यहाँ पे देख लें, ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता जो उसके ऊपर ईमान नहीं रखते। यानी इसका मतलब है कि हिदायत का सोर्स क्या है? कुरान। और कुरान को जो नहीं मानेगा वो हिदायत भी नहीं पाएगा। हिदायत यहां से मिलनी है, गाइडेंस इधर से मिलेगी। तो जो लोग सोचते हैं कि हमें तो गाइडेंस पहले ही मिली हुई है, कैसी गाइडेंस अगर वो कुरान के ऊपर ही नहीं ईमान रखते, अगर वो कुरान को ही नहीं मानते। ऐसे तो हम सब सोचते हैं या हम सब कहते हैं कि हमारा ईमान है कुरान के ऊपर, हम मानते हैं इसको अल्लाह का कलाम कहते हैं ना। तो ये हमारा कैसा ईमान है कि हम इसको मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और ये कामयाबी का रास्ता दिखाता है, ये हिदायत है और ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ हुआ है, फिर भी हमारे नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर वाकई ईमान होता तो हमारा क्या ये सलूक होता इसके साथ? अगर हमारा ईमान होता तो हम तो इसको कभी छोड़ते ही नहीं, इसको पढ़ते, इसको सीखते, इसको समझते। ये तो हमारी गाइड है, ये तो हमारे लिए फलाह का रास्ता बताने वाला है, ये तो हमें कामयाबी तक पहुंचाने वाला है, ये तो हमारी अल्टीमेट वो लाइफ जो एंडलेस लाइफ है, एंडलेस लाइफ है, उसकी लग्जरीज, उसकी सेफ्टी, उसकी में जन्नत की जमानत देने वाला है, ये तो हमें वो राह दिखाने वाला है। हम कैसे इसको छोड़ सकते थे? कैसे कह सकते थे कि हमें इसकी जरूरत नहीं? कैसे हम कह सकते थे इसको सीखना फर्ज है? कई लोगों का तो यही क्वेश्चन रहता है, फर्ज है क्या? चलो नहीं है फर्ज, ठीक है नहीं फर्ज, तो तुम रास्ता कैसे देखोगे जन्नत का? कैसे वो रास्ता पाओगे? कौन तुम्हें दिखाएगा? अल्लाह ताला तो फरमाया ला यहदीहिमुल्लाह, अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता, उनको गाइडेंस मिलती ही नहीं है। जाहिर है जो इसकी तरफ आएगा नहीं, जो मानेगा ही नहीं इसको, उसको गाइडेंस कैसे मिलेगी? ये रब्बुल आलमीन का कलाम है, वो रब जो समी है, बसीर है, खबीर है, आलीम है, उसका कलाम है। उसने हिदायत लेने के लिए इसको नाजिल किया है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, ये कुरान ऐसा है कि जिनके दिलों में अल्लाह ताला की खशियत होती है उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इससे, फिर वो अल्लाह की याद की तरफ झुक जाते हैं। देखिए आप, एक दुनिया का वजीर, अफसर, कोई बादशाह आपसे बात कर रहा हो तो इंसान भूले नहीं समाता। किसी ने मुझे कहा कि जी मुझे, आपको पता है मुझे तो वो एमडीज की मीटिंग में बुलाया गया और वो एमडी ने मेरा नाम लेके मुझसे बात की थी, इस पे वो इतनी खुश थी कि मेरे एमडी ने मुझसे बात की, पूरी मीटिंग में मेरा नाम लिया उसने। कितनी बड़ी एक बात थी ना, उसको अपनी वैल्यू लग रही कि मेरे से बात की। अल्लाह अकबर, ये सही बात आपको बता रही है, मैं ऐसे ही बोल रही। आप अपने हस्बैंड वगैरह से पूछ सकते हैं, अपने बेटे से पूछ सकते हैं, कोई भी जो जॉब करता है उसे पूछ लें कि आपकी कंपनी के एमडी अगर आपको मीटिंग में बुला के आपसे बात करें, सबके सामने आपसे बात की जा रही है, आपका नाम लेके, तो आपको कैसा लगेगा? अब देखना फिर उनकी खुशी की इंतहा, इतना ही उनके लिए बड़ा काफी हो जाएगा। और रब्बे कायनात मालिक और खालिक मुझसे और आपसे बात करें और हमें परवाह ही ना हो, हमें को फर्क ही ना पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इससे ही अंदाजा करें कि हमने क्या अहमियत दी है उसके कलाम को। दुख होता है और तो कुछ नहीं। इस इन बातों को कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई सोचना ही नहीं चाहता। अगर हम ये कहते हैं ना कि ये कुरान है, ये तो बड़ी हिदायत की किताब है, ये तो हमारे मसाइल का हल है, ये तो ये है, लेकिन आना हमने इसकी तरफ नहीं, अल्लाह जाने फिर क्यों ये बातें कर रहे हैं। वाकई अगर यकीन है इस बात का तो फिर तो हमें भागना चाहिए। अगर इसमें वाकई दिल का सुकून कहते हैं, अगर वाकई कहते हैं ये सच्ची किताब है और ये हिदायत का रास्ता है, तो फिर तो भागना चाहिए इसकी तरफ। वरना तो इसका मतलब है कि आपकी सिर्फ जुबान से बात है, अगर इसके बावजूद ही, कहने के बावजूद इसकी तरफ नहीं आते तो दिल में यकीन नहीं है। ऊपर ऊपर की मुंह की बातें हैं, तो मुंह की बातें तो मुनाफिकीन भी बहुत प्यारी कर लेते थे, बड़ी खूबसूरत बातें करते थे। अल्लाह ताला ने इस बात पे उनकी बख्शिश नहीं कर दी कि उन बातें बड़ी अच्छी करते हो भाई, क्या बात है तुम्हारी। उनकी बातों की तारीफ की गई कुरान में कि इनसी बातें सुन लो कि बातें कितनी खूबसूरत करते हैं। उसके आगे क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह की बातें ही रह जाए। अल्लाह अकबर। इन्नमा यफ्तरिल कदिब अल्लदीन ला युमिनून। बेशक घड़ लेते हैं झूठ को, वही लोग झूठ को घड़ते हैं जो ईमान नहीं रखते अल्लाह की आयात पर। ये झूठ, ये बातें कि इसने खुद ही बना लिया है, इसको तो कोई सिखाता है, ये इस तरह की बातें सिर्फ वो ही कर सकते हैं। ऐसे झूठ सिर्फ वो ही बोल सकते हैं जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं रखते। उनका ईमान नहीं इसलिए झूठ बोलते। अब देखिए ना, एक आदमी ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये क्या मोमिन जिना कर सकता है? आपने फरमाया हाँ हो सकता है। फिर एक जगह पे बुखल का भी आया, और क्या मोमिन चोरी कर सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा क्या झूठ बोल सकता है? फरमाया नहीं, झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि झूठ अल्लाह के ऊपर सिर्फ वही बोलता है जो उसकी आयात पर ईमान नहीं रखता। और आज देखिए झूठ इतना ज्यादा भी सोच नहीं सकती कि ऐसी ऐसी वीडियोस बनाना किसकी क्या जरूरत है। देखो आप, हैरत होती है इन लोगों को के ऊपर कि ये कौन सा आप दीन की खिदमत कर रहे हैं कि जो झूठी वीडियोस। एक बच्ची खड़ी भी है और उसको वो पता नहीं कोई गा रही है या क्या कर रही है, उसको ऊपर कुरान लगा दिया कि ये कुरान पढ़ रही है, और उसके बाद बड़े बड़े फिल्मी वो एक्टर्स और वो सारे दिखाए कि वो बड़े मैस्मराइज हो गए और उनके दिल पे उतर गया वो कलाम और वो इतने मुतासिर हुए। क्यों मजाक उड़ाते हो अपने दीन का? कहीं काबा के अंदर से देखो कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, तिलावत की आवाज आ रही काबा के अंदर से, जबकि अंदर कोई है ही नहीं। अब ये वीडियो इतनी वायरल, किसने इतना झूठ बनाया, इतना झूठ। फिर कहीं इसकी कहीं तस्वीरें लगा देते हैं, ऊपर आवाज किसी और की लगा देते हैं, झूठ, सब कुछ झूठ। ये कौन सी दीन की तबलीग है? और बाद में पता चलता है ये तो फोटोशॉप थी, ये तो ऐसे ही फेक वीडियो है। क्या इमेज रह जाता है मुसलमानों का, और इसमें क्या दीन की खिदमत है? जब ये पता चलता है कि ये झूठ था तो उल्टा बेइज्जती होती है, उल्टा बदनामी का बायस बनता है कि कितने झूठे लोग हैं, कभी भी आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। हमें प्रूव करने के लिए, अपने दीन को प्रूव करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है कि देखो वो एक बच्ची बोल रही है, अब वो अल्लाह जाने गाना गा रही है, कौन सा शो है, कौन सा क्या है। इंसान सोचता है ये देखो, अगर वो इतने ही मुतासिर हुए होते तो वो इस्लाम ना ले आते। झूठी वीडियोस इतनी आजकल वायरल होती हैं, कहीं यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, कहीं आप व्हाट्सएप पर दिखे आ रही हैं। ये झूठ क्या फरमाया? झूठ वो ही घड़ते हैं जिनका अल्लाह की आयात पे ईमान नहीं होता। वह उलाए का हुमुल कैदिबून, यही लोग हैं जो झूठे लोग हैं। और अल्लाह पे झूठ बांधना, उसके दीन के ऊपर झूठ बांधना सबसे बड़ा झूठ है। जो लोग इस चीज से भी नहीं चूकते, और फिर देखे किसी की सेइंग होती है, किसी उसको हदीस बना के पेश कर देते, ये हदीस है जी, हालांकि वो हदीस होती ही नहीं है। कितना झूठ है आज मुसलमानों के अंदर, और अपनी तरफ से वो सोच रहे होते हैं कि हम कितना मुतासिर कर रहे हैं लोगों को, देखो हमने कैसा एक बड़ी बात बना दी, कहीं अल्लाह लिखा दिखा देते हैं, इस तरह फोटोशॉप सारी चीजें, कहीं दिखा देते हैं चांद इतना बड़ा निकल रहा है कहीं से, कहीं ऐसे निकल दिखा देते हैं, देखो जी उसके ऊपर तिलावत लगा देते हैं, देखो ये पूरा हो गया, ये बात पूरी हो गई, अल्लाह अकबर। हर ऐसी चीजों को, इस झूठ को आगे भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि हमारा झूठ में हिस्सा ना पड़े। मन कफर बिल्लाही मिन बादी ईमानी, जो कुफर करे अल्लाह का, किसके बाद? ईमान लाने के बाद। अब ईमान लाने के बाद काफिर होने के दो माने हैं, एक माना तो ये है कि दिल में तो उसको पता है कि ये रसूल सच्चे हैं, मगर जुबान से इकरार नहीं करता। जैसे यहूदी जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर वो जुबान से नहीं मानते थे, इसी तरह मुशरिकीन में भी बास अच्छी तरह जानते थे कि ये सच्चे नबी हैं, मगर बस बोलेंगे तो फिर हमारी चौधराहट और सरदारी का क्या होगा। तो चाहे दिल में कोई समझता रहे कि कुरान सच्चा, नबी सच्चे, जब तक जुबान से इकरार नहीं करता एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये भी कुफर करना है ईमान के बाद, दिल के अंदर ईमान यानी दिल में माना हुआ, दिल में समझ है लेकिन नहीं मान रहे। और दूसरा जिसका खास तौर पे यहाँ पे बात हो रही है, वो है ईमान लाने के बाद कुफर का कलमा जुबान से निकाल देना, यानी मुसलमान है लेकिन कुफर का कलमा जुबान से निकाल दे तो वो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया। और उलमा ने इनके बारे में बताया भी है कि कौन सी बातें कहने से इंसान मुर्तद हो जाता है। आज तो कोई को पता ही नहीं चलता ना, लोग ऐसी ही बातें कह देते हैं, ऐसी बड़ी बातें कह देते हैं कि वो इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं और उनको नहीं पता होता। बहुत एहतियात करनी चाहिए अपनी जुबान खोलने से पहले, अल्लाह रसूल के बारे में, दीन के बारे में, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता उसको, मैं नहीं अल्लाह के इस हुक्म को मानता, एक हुक्म का भी इनकार कर देना इंसान को सारे कुरान के इनकार के बराबर है, एक का भी इनकार। अब मुर्तद होने के वाले के बारे में, यानी जो पहले मुसलमान था, ईमान का दावा करता था, उसके बाद उसने जुबान से कोई ऐसी बात निकाल दी, वो मुर्तद हो गया, तो उसकी सजा क्या है? अच्छा, एक एक्सेप्शन इसमें दी गई है, आपके भी शायद जहन में आ रही हो कि बाज दफा ऐसे होता है कि अल्लाह माफ करे, कोई लोगों के ऊपर इतना टॉर्चर होता है, या ऐसी उनको कोई मजबूरी की हालत आ जाती है, तो उनका क्या है? उनका एक्सेप्शनल केस है, इसलिए उनका कहा गया इल्ला मन उक्रिया व कल्बू मुतमाइन बिल ईमान, सिवाय उसके। एक बंदा तो है को ईमान के बाद उसने कुफर किया, जुबान से कलमा कुफर निकाल दिया, सिवाय उसके जो मजबूर कर दिया गया लेकिन उसके दिल में ईमान है। यार ये आयत खास तौर पे अम्मार बिन यासिर के बारे में नाजिल हुई, उनके ऊपर इतना टॉर्चर उनको किया गया, उनको ये ही नहीं पता चलता था मैं अपने मुंह से क्या बात निकाल रहा हूँ, तो उन्होंने उनकी बात मान के वो कलमा कुफर कह दिया, उसके बाद इतने परेशान हुए मेरे से ये क्या बात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़े आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने दिल को कैसा पाते, फरमाया दिल तो मेरा ईमान के पर मुतमईन है, तो बस ठीक है फिर। लेकिन देखे ना, बास चीजें ऐसी होती हैं कि इतना, जैसे आज भी दुनिया में अल्लाह ताला उन मुसलमानों के ऊपर रहम फरमाते हैं, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमाते हैं, अल्लाह उनको निजात दे ऐसे जालिमों से जिन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बंद किया, पर इतना जुल्म है यकीन करें मैं कभी पढ़ भी लू ना तो मैं सो नहीं सकती, इतना ज्यादा इंसान के आंसू निकल आते हैं सिर्फ पढ़ने से, अभी देखा नहीं है और अभी वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है, जैसे उनको ईमान से हटाने के साथ के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जैसे उनको वहां पे बंद किया गया है, और कोई कसूर नहीं, सिर्फ एक किसी को नमाज पढ़ते देख लिया, किसी को मस्जिद जाते देख लिया, किसी को सलाम करते देख लिया, कहते हैं इसको सफाया कर देंगे हम इनके दिलों से इस्लाम का, जब तक सफाया ना हो जाए उस वक्त तक उनकी अपनी तरफ से वो उनको मतलब एजुकेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हम एजुकेट कर रहे हैं, ये एजुकेशन क्या है कि इस्लाम का सफाया कर दो। अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को से अल्लाह ही बतला ले कि जो इस्लाम को उनके जहनों से उनकी जिंदगियों से मिटाने के लिए उनको ऐसा मजबूर कर दें कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन ऐसे लोग अगर मजबूर हो के उनकी बात मान लेती हैं तो वो इल्जाम उनके ऊपर कुछ नहीं है, वो इस कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। यहाँ पे किन की बात हो रही है जो कुफर के बाद अपनी मर्जी से, यानी आगे बात आ रही, वलाकिन मन शरह बिलकुफरी सदरन, जिसका सीना कुफर के लिए खुल गया, मुतमईन है कुफर के ऊपर, वो खुश है कि मैं ये इनकार करता हूँ और मुझे नहीं इसकी परवाह और मुझे नहीं है और मैं तो कुरान को, और ये अल्लाह माफ करे कि ये जो है ना इसके अंदर तो कहानी है, किसी के मुंह से ये बात भी निकली भी सुनी, ये जी कहानी है, ये तो ऐसे ही पुराने लोगों की कहानी है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं, ऐसी बातें हैं, या ये तो बाद में बनाई गई, या ये तो कयामत कुछ नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं होना, बस दुनिया के अंदर ये इनकार कर दिया, मुर्तद हो गया, अल्लाह का इनकार कर दिया, रसूल का इनकार कर दिया। तो ऐसा इंसान अगर उसका शरा सदर इसके ऊपर हुआ है, मुतमईन है इस पे, फअलैहिम गज़ब मिन अल्लाह, तो उनके ऊपर अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा, और इंसान को अल्लाह ताला की रहमत की जरूरत है हमेशा, उसका गजब इंसान नहीं सह सकता, अल्लाह का गजब, उसका गुस्सा, जिसके कुन कहने से उसकी जिंदगी तलपट हो जाती है इंसान की, एक उसका कुन कहना है और इंसान की हस्ती सा मिट सकती है, उसके गुस्से को उसके गजब को कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसा इंसान अल्लाह के गजब में आ गया। वलहुम आदाबुन अज़ीम, उनके लिए बड़ा अजाब है, बड़ा अजाब, जिस अजाब को, अजाब का वर्ड ही, टॉर्चर का वर्ड ही इनाफ है, लेकिन जब कह दिया बड़ा अजाब, अल्लाह के यहाँ बड़ा अजाब कैसा होगा, अल्लाह ताला माफ करे और अल्लाह ताला इससे हमें और हमारी नस्लों को भी महफूज रखे, नस्लों को भी महफूज रखे, कि कोई ईमान के बाद कुफर में चला जाए और वो उसके ऊपर मुतमईन हो गया, उसके लिए ये सजा है। दुनिया में तो मुर्तद की सजा कत्ल है, कि वो काबिले कत्ल है जो मुर्तद हो जाए, और आखरत में अल्लाह का गुस्सा, दर्दनाक, बड़ा अजाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी शिर्क ना करना, चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, चाहे तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे तुझे जला दिया जाए, कभी शिर्क ना करना। हाँ, मगर जैसे अब मैंने आपको बताया ना, ऐसे कुछ लोग हैं जो इतने मजबूर हो गए, जैसे अमार बिन यासिर है, देखिए ना, अब कोई भी इंसान की एक लिमिट होती है ना, किसी को इतनी ज्यादा तकलीफ दे दी जाए, लेकिन अब इसके अंदर भी अजीमत का रास्ता भी है, अजीमत मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट, जो जो बेस्ट वाला बेस्ट, वो ये है कि जैसे हजरत बिलाल थे, कितना उनको टॉर्चर किया गया, उन्होंने कहा नहीं, आहद आहद ही मुंह से निकलता था, मगर हर एक इंसान, अल्लाह को पता है सब इंसानों की एक जितनी ताकत नहीं है, कोई हो जाएंगे जो गिर पड़ेंगे, कोई हो जाएंगे जो टूट जाएंगे, तो उस वक्त जब इतनी मजबूरी की हालत होती है ना, जैसे कि आप देखें हराम भी उस वक्त अलाउड हो जाता है जब इंसान की जान निकलने वाले का खतरा हो, तो उस वक्त उतना सा हराम बस जितना कि इंसान की जान बचाने के लिए, और वो भी कराहत होनी चाहिए इसमें, तो खुशी से नहीं खाना शुरू कर देना कि चलो चलो अच्छा हो गया, मौका मिल गया, वैसे तो मुझे शराब अलाउड नहीं थी, आज तो शराब पी के देखता हूँ, क्योंकि जाहिर है आप तो मेरे लिए जायज हो गई है, तो मजा करते हैं आप, ऐसे नहीं होना चाहिए, फिर भी इंसान के दिल में कराहत हो, ये अल्लाह मैं मजबूरी के अंदर ये कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर कलमा कुफर कहना पड़ गया उसको, तो तब भी दिल में कराहत होनी चाहिए, तब भी दिल दिल में ईमान होना चाहिए। अब देखें यहां पे, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि जब हम कहते हैं ना कोई मजबूर कर दिया गया, वो कौन सी मजबूरी है, बाज लोग ऐसे ही किसी चीज को मजबूरी बना देते हैं, अब क्या करें जी, हम इस मुल्क में रहते हैं, हमारी तो मजबूरी है, अब हम तो इनके सामने, तो अब हम बोलेंगे किसी ने मुझे कहा कि उसके हस्बैंड जो हैं, जाहिर वो उस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के अंदर जहाँ पे मंदिर हैं, हर तरफ कुफर है, शिर्क है, तो वो कहने लगी कि उसका हस्बैंड ऐसा है कि वो जब मंदिर के सामने से गुजरता है तो खड़ा होके बाकायदा ताजीम के साथ उनके आगे हाथ बांधता है, फिर गुजरता है फिर आगे से। तो बाज लोग हो सकता है ऐसी जगहों पे, जो हम गैर मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं, तो हम सोचें कि जी हम तो वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं, क्या करें भी, हमें इनको तो खुश करना है ना। ये मजबूरी नहीं है यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, ये कोई मजबूरी नहीं है, समझ आई बात। ऐसे ही नहीं हम कोई चीजों को मजबूरी बना सकते कि नहीं जी बस हमने इनके अंदर रहना है, फिर हमें मतलब यानी ये हमारे से फिर खुश भी तो रहें, क्योंकि फिर हमें वरना तो इनसे खतरा रहेगा। नहीं, मजबूरी ये है कि आपको अपनी जान इज्जत इसका जाने का खतरा हो गया, आपके ऐसे हालात आ गए हैं आपके ऊपर कि या तो आप कलमा कुफर बोल दें या फिर जान चली जाएगी या इज्जत चली जाएगी या ऐसी कोई चीज हो जाएगी, इतने आप मजबूर हो गए तब है। ऐसे नहीं कि भाई इनके अंदर रहते हैं तो अब हम क्या करें, इसको मजबूरियां ना कहें, इसको ये बहाने बना के उनकी खुश करने के लिए ये ना चीजें अपनाएं, ठीक है, फिर ईमानी जुर्रत कहाँ चली जाएगी। फिर हम कहते हैं नहीं नहीं हम मजबूर हैं। कौन मजबूर कर रहा है आपको ये कहें कि उनकी खुशनुदी चाहिए अल्लाह की खुशनुदी छोड़ के। तो इंसान के अंदर ना कराहत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए शिर्क से, कुफर से, काफिर से, मुशरिक से नहीं है, शिर्क से और कुफर से। उसके अंदर ईमानी गैरत होनी चाहिए। आपको कोई बुरा कहे तो आपको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अल्लाह ताला के साथ कोई शिर्क कर रहा है तो कोई बुराई ना लगे, और इसको ठीक है जी कोई मसला नहीं है, हम क्या करें हमारी मजबूरी नहीं, ये मजबूरी नहीं होती फिर। ठीक है, बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। ذلك بأن مستحب الحياة الدنيا على الآخرة, ये इसलिए ईमान के बाद कुफर में चले जाते हैं क्योंकि इन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दी आखरत पे। दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत है, दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी दी। और आप देखें जितने भी ये लोग कुफर में चले जाते हैं और कोई पीछे नहीं होता। अब बाज दफा ये लोग हमें भेजते हैं, कोई बुक भेज देते हैं, उसके अंदर कभी कोई हमारे डोर्स के ऊपर रख जाते हैं मटेरियल, उसके अंदर जी बड़ा लिखा हुआ है। एक दफा एक जगह पे इन्होंने मुसलमानों के एड्रेसेस लेकर पता नहीं कहाँ से लिए होंगे, उनको सबको भेजी ये किताब जिसमें ये लिखा हुआ है, बताए हुए हैं सबके इंटरव्यूज, जी ये भी मुसलमान था देखो अब ये क्रिश्चियन हो गया, ये भी मुसलमान था देखो क्रिश्चियन, वो अपने बता रहे हैं जी मैं तो ऐसे था और मुझे तो इस्लाम में ये और वो और मुझे तो क्रिश्चियनिटी में ये नजर आया। ऐसा नहीं है कि कोई हक नजर आ गया, असल में उसके पीछे क्या है, दुनिया 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 और कुछ भी नहीं। उनको ये पता है, चाहे वो हिंदू हो गया चाहे वो क्रिश्चियन हो गया, चाहे वो सिर्फ इसलिए कि इस वक्त उनका तोती बोल रहा है, इस वक्त दुनिया में वो तरक्कियां कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास दुनिया है तो ये उसके बंदे हैं और उनके पीछे चल पड़े। वरना खुदा की कसम कोई हक उनके पास नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो कन्विंसिंग हो, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो यहूदी है। यहूदी तो खैर उनके पास तो कन्वर्जन का कोई है ही नहीं है, वो तो कन्वर्ट करते ही नहीं। लेकिन जो हिंदू हो गया ना, क्या उसको नजर आया वहां पे, क्या नजर आया, सिर्फ दुनिया कि अपने आप को बचा लूं इसलिए कि यहां पे रहना मुझे एक्सेप्टेबल हो जाए, इसलिए कि मैं इनके शर से बच जाऊं, इसलिए कि मेरी दुनिया में कामयाबी हो जाए, नौकरी मिलना आसान हो जाए, एडमिशन मिलना आसान हो जाए क्योंकि मैं इनमें रहता हूं, या कोई क्रिश्चियन हो गया सिर्फ इसलिए कि दुनिया मिल जाएगी, इनके फायदे मिल जाएंगे, ये बहुत पूछते हैं ये नौकरियां दिला देते हैं, या और कोई भी कुफर। आज कादियानी बनते हैं जो लोग, कादियानियों को इख्तियार कर लेते हैं वो इसलिए कि वो ग्रीन कार्ड के लिए किसी के लिए हेल्प करते हैं, वो आपको असाइलम दिला देंगे। कुफर में दाखिल हुए सिर्फ इसलिए कि दुनिया को प्रायोरिटी दे दी आखरत पे, बहुत घाटे का सौदा कर लिया, इसलिए कि दुनिया जो है ना ये खत्म हो जाने वाली है और आखरत खैरु व अबका है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया अल आखरत तो खैरु व अबका, इन्होंने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दी। पता नहीं असाइलम लेने के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए, इन फायदों के लिए तुम इनके दीन इख्तियार कर रहे हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कल का दिन भी तुमने देखना है या नहीं, कल का सूरज भी चढ़ेगा या नहीं तुम्हारी जिंदगी, कितने घाटे का सौदा कर लिया तुमने। यकीन जाने दुख होता है ऐसी कहानियों को भी पढ़ के। और ऐसे लोग हैं, ये आप इनकार ना करें कि नहीं जी ऐसे है ही नहीं, इन्होंने झूठी कहा। नहीं नहीं है ऐसे, इतने ना समझे, क्योंकि जो मुसलमान अपने दीन को ही खुद नहीं पहचानता फिर वो इनके ट्रैप में आ ही जाता है। जब उसको लालच पता चलता है, जब उसको पता चलता है इतना कुछ मिलेगा यहाँ पे, तो वो चला जाता है, इसलिए कि अपने दीन की कोई समझ नहीं। और आज अनफॉर्चुनेटली हमारी अक्सरियत को नहीं समझ, हमें पता ही नहीं है हमारे पास कौन सा बड़ा हक है। उसकी पहचान जब है ही नहीं, उसकी समझ ही नहीं, तो फिर जाहिर है जो जिस तरफ लगा लेगा उस तरफ चल पड़ेंगे। इंटरनेट पे बैठे किसी की बातों में आ गए, उधर गए किसी की बातों में आ गए। और इनके मिशनरीज तो बहुत तेज हैं, बहुत काम कर रहे हैं, हम सुस्त हैं, वो काम कर रहे हैं। वो अपना पैसा भी, अपनी जेब से पैसा लगा लगा के दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहां पे काम करते हैं। कभी आप देखें ना इनका, स्टडी करें, तो आपको पता चले ये कितनी मेहनत करते हैं, वाकई मेहनत करते हैं। तो अब जो ऐसे मुसलमान जो पहले ही नाम के मुसलमान थे, जिनको अपने दीन का कुछ नहीं पता था, वो इनके अब जाहिर है फायदे देखे दुनिया के, और वो पहले ही दुनिया के बंदे होते, उन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी को तरजीह दे दी आखरत पे। वरना अल्लाह ना या दिल कौमिल काफिर, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता फिर काफिर कौम को। जो कुफर करे, जो अपना दीन ईमान बेच दे सिर्फ थोड़े से टकों के पीछे, किसी की सिटीजनशिप के पीछे, कई फायदों के पीछे, यहीं के 4 दिन के फायदों के पीछे, उसके लिए दीन इतना सस्ता था, उसके लिए दीन की ये अहमियत थी, उसके लिए दीन इतना बेहसियत चीज थी, यूजलेस चीज थी, कि जैसे कोई भी चीज उठा के फेंक दे, इस तरह उसने उठा के दीन फेंका और कुछ और अपना लिया। इतनी सी हैसियत, ऐसे को फिर अल्लाह भी हिदायत नहीं देता। ऐसे लोग हैं जिनके दिलों पे, उनकी आंखों कानों के ऊपर अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, मोहर। अब नहीं, दिल के अंदर कोई बात जाएगी नहीं, अब वो एहसास ही खत्म हो जाता है। वो आंखें जिन्होंने देख के हिदायत पानी थी, वो कान जिन्होंने सुन के हिदायत के रास्ते पर आना था, वो दिल जिसमें बात असर करनी थी, उनके ऊपर मोहर लग गई। जब दुनिया को प्रायोरिटी इंसान देता है ना, सिर्फ दुनिया ही दुनिया नजर आती है, कुछ और नजर नहीं आता, फिर इंसान आखरत के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचता है ना देखता है, फिर उसको बस वही चीज नजर आती है जहां पे दुनिया का फायदा है, वही चीज वो सुनता है जहां पे उसकी दुनिया कोई चीज कोई कामयाबी मिल रही है, वो सोच भी उसकी वही बन जाती है। फिर वो, आप उनको कुरान सुनाते रहे, आप उनको नसीहत की बातें करते रहे, उसको समझ ही नहीं आती, असर ही नहीं होता, क्योंकि वो आखरत के बारे में नहीं सोच रहा ना। उसका पॉइंट जो है ना, वो सारी उसका महवर, उसकी जिंदगी का जो सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द उसकी जिंदगी घूम रही, वो दुनिया है, आखरत नहीं है। और आप देखेंगे, आप कभी, अल्लाह ताला माफ करे, कि कभी आप ऐसे लोगों से जब मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आयत क्या कह रही है। शायद आपको ऐसे पढ़ के नहीं समझ आती, लेकिन देर आर पीपल अराउंड जो ऐसे हैं, और जब वो आखरत को छोड़ के, भुला के, और बस दुनिया को प्रायोरिटी बना लेते हैं ना, तो फिर बस उनको कोई भी बातें कही जाए, कुछ एहसास ही खत्म हो जाता है। वो मुतमईन है उस पे, औलाए कौमुल गाफिलून, वो गाफिल है। गफलत पता है क्या होती है, जानते हैं गफलत क्या होती है? हम कहते हैं गाफिल है फलां, गाफिल है, गफलत में पड़ गया। गफलत ये होती है कि पता भी है फिर भी तवज्जो ही नहीं देनी। हम कहते हैं ना, पता है मुझे, सारा पता है, फिर भी तवज्जो नहीं दे रहे ना, तो ये गफलत है। और हमारी अक्सरियत गफलत में मुबतला है। ऐसा नहीं कि उनको ये ही नहीं पता कि अल्लाह का कलाम सच्चा है, कहते भी हैं मुंह से, ऐसा नहीं है कि उनको पता है कि, उनको पद बेचारों को पता ही नहीं कि कयामत है, ऐसा नहीं, उनको पता ही नहीं है कि अल्लाह के सामने जवाब देना, पता है, सब चीजें पता है। ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं कि मरना है, किसको नहीं पता भाई, किसको नहीं पता, हर एक को पता है। तो ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं हम उनको दे रहे, लेकिन गफलत है, तवज्जो नहीं है। और कुरान गफलत के पर्दों को हटाता है, तवज्जो कराता है, इस तरफ देखो, फोकस तुम्हारा ये होना चाहिए। गफलत के हमारे ऊपर पर्दे पड़ जाते हैं, जब कुरान से दूर होते हैं, गफलत के पर्दे एक के ऊपर एक के ऊपर एक पर्दा पड़ता जाता है, और फिर कभी कभी पर्दे इतने मोटे हो जाते हैं कि ना आंखें कुछ देखती हैं, ना कान कुछ सुनते हैं, ना दिल में कुछ बात पड़ती है। आंखें नजर है लेकिन वो नहीं देखती जो अल्लाह ताला चाहता है दिखाना। कान सुनते हैं मगर वो बात नहीं सुनते जो आखरत की तरफ फोकस्ड हो। ला जरम अन्नहुम फिल आखरती हुमुल खासिरून, कोई शक नहीं कि फिर आखरत में यही लोग खसारा पाने वाले। जाहिर है जब गफलतों में पड़े रहे, जब दुनिया को प्रायोरिटी दी रखी, तो फिर क्या होगा आखरत में। सूरह नाजियात में अल्लाह ताला ने फरमाया, फअम्मा मन तगा व आथर अल हयात दुनिया फइन्नल जहीम हिय अल मअवा। जो जिसने सरकशी की और दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी दी ना, प्रायोरिटीज का ही तो फर्क है। प्रायोरिटी ऊपर टॉप पे दुनिया को दी तो जहन्नुम उसका ठिकाना, फिर आखरत में उसके लिए तो कुछ नहीं है। जाहिर है सारी उसकी जिंदगी सेंटर्ड टूवर्ड्स दुनिया थी। यहीं का फायदा, यहीं का नुकसान, यहीं की हर चीज उसके लिए मैटर करती थी, उसके लिए आखरत मैटर नहीं करती थी। तो आखरत में क्या मिलेगा फिर। सुम्मा फिर इन रब्बक लिल्लदीना हाजरू मिन बाद, फिर बेशक वो लोग जिन्होंने हिजरत की, मिम बादी माफू तीनों, इसके बाद के वो फितने में डाले गए, आजमाइश में डाले गए, टॉर्चर किया गया उनको, उनको सताया गया, उनको आजमाइश में डाला गया, उन्होंने उसके बाद हिजरत कर ली। मक्की जिंदगी में तो ये बात बहुत कॉमन थी कि कई लोग थे जिनको के इतना सताया गया, फिर उन्होंने हिजरत की। सुम्मा जहाद हुआ, सबर हुआ, फिर उन्होंने जिहाद किया। मक्का में तो कोई जिहाद नहीं था। जिहाद का माना उस वक्त में ले तो, और वैसे भी जिहाद का माना जो उसका डिक्शनरी मीनिंग है वो है अंथक मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, स्ट्रगल करना। तो जिहाद किया, वो सबर, उन्होंने सबर किया, डटे रहे, वो जमे रहे, उन्होंने ये रास्ता छोड़ा नहीं। तो इसके बाद क्या फरमाया, अब देखें इसके बाद, इन्ना रब्बक मिम बादिहा लगफूर रहीम, बेशक तेरा रब इसके बाद, किसके बाद, किसके बाद, हिजरत, जिहाद, सबर, इसके बाद लगफूर रहीम है। अरे वो लोग जिन्होंने, देखें घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, मगर वो लोग जिन्होंने अल्लाह की खातिर घर बार छोड़े, ठीक है आप तालीम की खातिर छोड़ते हैं, जॉब्स की खातिर छोड़ते हैं, बिजनेस की खातिर छोड़ते हैं, वो तो बहुत कॉमन है। इमिग्रेशन ले लेते हैं कोई अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए, कि तो बड़े हालात से यहाँ से तंग आ गए हैं, कोई वहाँ पे बड़े एडवांस है और वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज हैं और वहाँ पे तालीम है और वहाँ पे अच्छा बिजनेस चलेगा, तो उसके लिए तो बहुत लोग इमिग्रेशन लेते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए कि उसके दीन पे चलना मुझे यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, मैं किसी और जगह चली जाऊँ कि वहाँ पे अल्लाह ताला के दीन के ऊपर चल सकूँ, वो बहुत कम है। इसके बाद के उनको आजमाइशों में डाला गया, उन्होंने हिजरत कर ली, और उस जमाने में तो बहुत ही मुश्किल था हिजरत करना, बिकॉज वो ट्राइबल सिस्टम था, ट्राइब्स में रहते थे, जो उनकी प्रोटेक्शन थी, तो अपनी प्रोटेक्शन से आप निकल गए बेसिकली। अब आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है जब आप अपनी ट्राइब से निकले। वो उन्होंने हिजरतें की, उन्होंने जिहाद किया, वो सब्र से चलते रहे, चाहे इतनी आजमाइशें आई थी। आप देखें दो दफा हिजरत हबशा हुई, फिर मदीना की तरफ हिजरत। वो एलियंस थे, आज भी किसी नई जगह जाके सेट होना आसान नहीं होता। और कहाँ वो जमाना जहाँ पे लोग बस अपने अपने उन्हीं को अपना समझते थे, या उन्हीं के लिए खड़े होते थे, या उसी को कोई डिफेंड करता था जो उसके अपने कबीले का होता था, जो अपने कबीले का नहीं तो होता था उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इतनी काम जो करेगा मिम बादिहा, इसके बाद अल्लाह गफूर रहीम, ने उसने अपने आप को दिखा दिया ना कि मैं सिंसियर हूं, मैं इस दीन के लिए, मैं इसके ऊपर चलने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकता, उसने प्रूव कर दिया। तो अल्लाह गफूर रहीम है, ये नहीं कि अपने गलत काम हम करते रहें, हम बैठे रहें, हमने जो करना है हम मर्जियां करें, उसके बाद कहें अल्लाह तो गफूर रहीम है, कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, उसने तो माफ कर ही देना। हमने नहीं अपनी डगर छोड़नी, हमने गलत काम नहीं छोड़ने, वो गफूर रहीम है, उसका काम है वो माफ करता रहे, हमारा तो काम है हम तो यही करेंगे जो हमारी मर्जी होगी, ये तो बात नहीं है। यहाँ पे इतनी बातों के बाद फरमाया वो गफूर रहीम, इसका मतलब है अगर अल्लाह ताला से चाहते हैं ना कि वो बख्श दे हमें, वो हम पे रहम कर दे, तो हमें सिंसेरिटी दिखानी होगी, हमें ये प्रूव करना होगा कि हम कितना ज्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को, हमें कुछ स्टेप उठाना पड़ेगा। हम अपने उन गुनाहों को छोड़ें, हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक होने के लिए अल्लाह को खुश करने वाले काम करें ताकि हमारी सिंसेरिटी पता चले। यौम ताती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा, जिस दिन आएगा हर नफ्स झगड़ेगा अपने नफ्स के बारे में। अल्लाह अकबर, कोई किसी और के लिए नहीं झगड़ेगा। हाँ तो माँ बच्चे के आगे खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे को कोई कुछ कह के दिखाए, कोई कुछ बात करके दिखाए, कोई अपने दोस्त दोस्त के लिए खड़ी हो जाती है। उस दिन ना माँ अपनी औलाद के लिए खड़ी होगी, ना बाप अपने बच्चे के लिए खड़ा होगा, ना दोस्त दोस्त के लिए कोई हिमायत में बोलेगा। हर नफ्स सिर्फ अपने लिए बोलेगा, सिर्फ अपने लिए झगड़ेगा, हर एक अपना केस खुद लड़ेगा, अपनी सफाइयां पेश करेगा, कहेगा मेरा कोई कसूर नहीं, अल्लाह इसको डाल दे उसको डाल दे, या अल्लाह किसी को भी डाल दे जहन्नुम में मगर मुझे बचा। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबती व बनी, उस दिन इंसान दौड़ेगा अपने भाई से, बाप से, माँ से, अपने कबीले कुंबे से। और अल्लाह ताला ने फरमाया जिस दिन इंसान कहेगा, सूरह मारिज में आता है कि जिस दिन इंसान कहेगा कि या अल्लाह इन सबको जहन्नुम में डाल दे मुझे बचा ले, बस इसीलिए जब जहन्नुम को देखेगा इंसान तो हर इंसान अपने घुटनों के बल गिर पड़ेगा और कहेगा नफसी 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 नफसी, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मुझे बचा ले, बस अल्लाह मुझे बचा ले। हर नफ्स अपने लिए सफाइयां देगा, अपने लिए दुआइयां देगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, चाहे उसको किसी को भी झोंकना पड़े आग में, कहेगा बस मुझे बचा ले अल्लाह। अपनी जान की कितनी फिक्र पड़ जाएगी, अपनी जान की कितनी फिक्र पड़ जाएगी। काश इतनी फिक्र दुनिया में अपनी जान की हम कर लें कि हमने अपनी जान को बचाना है तो हम उसके कहने पे, इसके कहने पे, उसको खुश करने के लिए, उसको खुश करने के लिए ना जहन्नुम की आग अपने लिए खरीदें, ना हम गुनाहों को अपने सीने से लगाएं क्योंकि हमने इनको खुश करना। काश इतनी हमें अपने आप से सिंसेरिटी खैर ख्वाही दुनिया में हो जाए कि हमने अपने आप को बचाना है, मैं अपने हस्बैंड के कहने पे, अपने माँ बाप के कहने पे, लोगों के कहने पे अपने आप को क्यों जहन्नुम की आग में धकेलूं, क्यों मैं इनकी खुशी की खातिर जहन्नुम का सौदा करूं। तो उस दिन इंसान कहेगा अल्लाह मेरा तो कोई कसूर नहीं, फलाने का कसूर, इसने कहा, उसने किया, उसने किया, हत्ता के रूह कहेगी अल्लाह जिस्म, ये मेरा जिस्म है, इसने मुझे मरवा दिया। जिसम कहेगा हाय ये रूह है जो मुझे फैसले करती थी मेरे लिए, ये कहती थी ये कर ये कर, मैं तो सिर्फ इसका टूल था, जो ये कहती थी मैं तो वो करता था। रूह कहेगी करने वाला तो ये था, इसने जुबान चली, हाथ चले, पैर चले, नजरें थी, ये सारी तो जिसम का हिस्सा थी, मैंने क्या किया, इसने किया। तो इंसान हर एक अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा, या अल्लाह कैसी नफसा नफसी होगी, कैसी नफसा नफसी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने वो मंजरनामा दिखाया कि देखो आज अपने आप को बचाओ, आज अपनी फिक्र करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन किसी ने तुम्हारा नहीं बनना, वतुवफ्फा कुल्लु नफ्सिन मा आमिलत, और पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर एक को जो उसने अमल किया, वहुम ला युज़लमून, और कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, सब चीज का पूरा पूरा बदला, यानी चाहे बुराई है चाहे वो भलाई है। इवन मैं यामल मिसकाला जर्रतिन खैरन यरा, मैं यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रन, जर्रे के बराबर भी नेकी भी की है तो वो उसका भी बदला मिलेगा, जर्रे के बराबर गुनाह भी है तो उसको भी उसको दिखा दिया जाएगा। और जुल्म नहीं किया जाएगा, जुल्म तो ये होगा ना कि अगर नेकियों में कमी कर दी जाए, ओहो कुछ नेकियां तो भूल ही गए इसमें ऐड करने, ओहो कुछ नेकियां तो डाली ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये जुल्म हो जाता है फिर, या गुनाह में इजाफा कर दिया, नहीं भी किया गुनाह फिर भी डाल दिए गए अंदर। तो दुनिया में जैसे होता है कि वो बेचारा कोई मजलूम है, उसके ऊपर इल्जाम थोप दिया, सारा जुर्म उसके सर डाल दिया, उसको जेल करा दी गई, ये इस तरह की चीजें वहां नहीं होंगी, अपने अपनी भरनी पड़ेगी, जो करेगा वो भरेगा। ये जो मिसालें हैं, ये मुहावरे बोले जाते थे ना, ये वाकई वही कुरान ने जो बातें कही हैं उन्हीं से लिए गए हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जो करेगा वही भरेगा, किसी और के सर नहीं डाल सकता उस दिन। وضرب الله مثلا قرية، اب ایک ناشکری بستی کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی ہے کہ ایک مثال اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ایک بستی کی، وہ مثال کیا، کانت آمنت مطمئنت، وہ تھی امن والی محفوظ بستی، وہ ایسی بستی تھی جو بڑی مطمئن رہتی تھی اور بڑی سکون کے ساتھ رہنے والی تھی. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اچھا ان کا رزق بھی اتنا ان کو ملا ہوا تھا وافر کہ ہر طرف سے ان کے پاس رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق آتا تھا. اب یہ بھی کہا جاتا ہے بعض تفسیروں میں ہے کہ یہ مکہ کی بات کی جا رہی، اس لیے کہ مکہ میں دیکھیں آپ اتنی رزق کی فراوانی تھی، حج پہ اتنی جگہ سے تجارت تھی، اتنی ٹریڈنگ ہب تھا. اسی لیے تو مشرقین اس سے پریشان تھے کہ اگر ہم ایمان لیا تو ہمارے رزق روٹی کا کیا ہوگا. تو وہ ایسی بستی تھی کہ جہاں پہ رزق کی فراوانی تھی، ہر طرف سے رزق کھچا چلا آتا تھا. اور اگر اس کو مکہ کی بستی نہ ملے تو تب بھی ایک مکہ کی بستی تو تھی نا مطمئن، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ کعبہ کے متولی تھے نا، اٹھا کے کسی کا بت پھینک دیں گے اگر آپ نے ہماری طرف ذرا بھی آنکھ بھر کے دیکھا تو. تو کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا، ٹچ نہیں کرتا تھا ان کے قافلوں کو، یہ بڑے مطمئن تھے اور پھر رزق بھی فراوانی سے تھا ان کے پاس. آس پاس کوئی لوٹ کسوٹ ہو رہی ان کو نہیں کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تھا، یہ امن میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، اب ویسے بھی کسی بھی ایک عام بات، ایک عام بستی کا بھی کسی کا بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بستی اس کی ایک مثال ہے، یہ ہر بستی کے لیے جو بھی مطمئن رہ رہی ہو، اطمینان سے ہے، ان کے پاس رزق بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کرے نا اس حال میں کہ تین نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں، وہ امیر ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں جمع ہو گئی ہیں، پوری دنیا کی نعمتیں نا اس کو مل گئی ہیں. وہ تین نعمتیں کیا ہیں؟ ان میں ایک نعمت ہے کہ وہ امن کی جگہ میں رہتا ہے، وہ حالت امن میں. اگر آپ اس ایسے ملک ایسے شہر میں رہتے ہیں نا جہاں پہ آپ کے پاس سیفٹی ہے، جہاں تو سمجھ لیں ایک نعمت آپ کے پاس ہے، وہ جس کو آپ کہیں کہ آپ کے پاس دنیا کی نعمتیں آپ کو مل گئیں، ان میں سے ایک نعمت ہے آپ کے پاس. دوسری نعمت کیا ہے؟ وہ صبح اس حال میں کریں کہ وہ صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، عافیت میں. انہیں آپ کو ایسی بیماری نہیں کہ آپ بیڈ ریڈن ہیں، اللہ معاف کرے یہاں سے، آپ صحت مند اٹھیں. چھوٹی موٹی تو چیزیں چلتی رہتی ہیں لیکن آپ اپنے کام خود کر رہے ہیں، آپ اٹھ رہے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، صحت کی حالت ہے نا یہ. نمبر تھری، اس دن کی روزی، میری بات کو سمجھیں، اس دن کی روزی اس کے پاس ہو. قوت کا لفظ آیا ہے عربک میں، قوت کہتے ہیں اتنے سے کھانے پینے کو جس سے زندگی چلتی رہے، موت سے انسان بچا رہے. ہماری تو خیر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم سے نعمتوں کا سوال نہ کرے، ہماری تو پینٹریز، ہمارے فریج اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ مہینے بھر کا، کئی مہینوں کا کھانا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. تو اس دن کی روزی اس کے پاس ہے. مجھے آپ بتائیں، جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں الحمدللہ، کیا سب کے پاس یہ تین نعمتیں نہیں ہیں؟ اس کے باوجود رونے دھونے ایسے ہیں کہ بس آج کے دن کا کھانا ہے نا آپ کے پاس، آپ کے پاس صحت ہے نا، اور آپ امن کی جگہ پہ رہ رہے ہیں نا، تو آپ کے پاس تو پوری دنیا کی نعمتیں آ گئی ہیں، آپ امیر ہیں. لیکن کیا اس بستی والوں نے کیا جو کہ ہم کرتے ہیں؟ فَكَفَى رَتْبِ أَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی. ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو نعمتیں دی، امن بھی دیا، رزق بھی دیا، اور اتنی فراوانی سے رزق بھی آ رہا ہے، سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، کوئی بم نہیں گر رہے ان کے گھروں کے اوپر، کوئی وار نہیں ہے، کوئی ڈاکو گھر پہ نہیں آ رہے، کوئی قتل و غارت نہیں ہو رہا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، امن سے آرام سے رہ رہے ہیں، اور کھانا پینا بھی ہے، صحت بھی ہے. اور ان کو بتا دیا گیا، یہاں پہ دو چیزوں کی بات کی گئی، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے شکر گزاری کرتے، اللہ کے آگے بچھ جاتے، انہوں نے ناشکری، انکار کیا. کفر کا مطلب انکار، انکار کا مطلب کیا؟ یہاں پہ ناشکری. ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ कुफर के, कुफर और शुक्र जो है ना ऑपोजिट चीज है, एक शुक्र है और एक कुफर है, इसलिए कुफर को नाशुक्री कहते हैं। कि यानी शुक्र वाली जिंदगी क्या होती है, जिसमें इंसान के दिल में ये एहसास हो। लेकिन तीन चीजें इसमें हैं, शुक्र वाली आपको जिंदगी बता रही, फिर आपको कुफर वाली खुद ही समझ आ जाएगी। शुक्र वाली जिंदगी ये है कि दिल में ये एहसास हो कि सारा कुछ जो भी मेरे पास है ना, मेरे रब का फसल, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, मेरा अपना कोई कमाल नहीं, मेरी अपनी कोई कुव्वत नहीं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाते थे ना, तो उसके बाद एक दुआ करते थे, जो ये दुआ खाने के बाद करेगा उसके अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देता है। उसमें भी यही है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा अत'आम या अत'अमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरी हौल मिन्नी वला कुव्वतिन, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे ये खाना दिया, मुझे रिज़्क़ अता फरमाया, जबकि मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, कोई सलाहियत नहीं इसको हासिल करने की। यानी जो भी मुझे हासिल हुआ है ना, जो भी ये मुझे खाना मिला है, या जो भी नेमत मुझे मिल रही, ये अंदर एहसास होना कि ये मेरे किसी कुव्वत से नहीं है, मुझ पे अल्लाह का करम है, अंदर ये होना चाहिए। इसके मुकाबले में अंदर जब कुफर होता है ना, तो फिर इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तो मुझे दिया गया मेरे इल्म की बदौलत। ये कुरान में आता है कि कारून ने कहा था कि मुझे मेरी मेहनत से दिया है, की वजह से मिला है, मेरे इल्म की वजह से मिला है, मैंने दिन रात कमाई की, मैंने वहां इन्वेस्ट किया, देखो जी मेरे पास इतनी स्किल, मेरे पास इतनी कुव्वत। इंसान जब ये कहता है, तो इसका मतलब है कि अंदर नाशुक्री है, अंदर नाशुक्री है, यही कारून ने किया था। तो अंदर शुक्रगुजारी क्या है दिल में, कि मेरे पास जितनी नेमतें हैं, मेरे इल्म की क्या हैसियत है, मुझे इल्म देने वाला कौन है, मुझे कुव्वत देने वाला कौन है, मुझे ताकत देने वाला कौन है, मुझे ज़हन देने वाला कौन है, अल्लाह, तो अल्लाह ने दिया है मुझे। ये है अंदर का शुक्र। ठीक है, अब आ गया जुबान पे शुक्र। जुबान पे शुक्र क्या है कि इंसान का अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की तारीफें, उसी का शुक्र, उसी की बड़ाई बयान करना, उसी के गुण गाना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए अफजल कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हो गया। अब इससे भी आगे अमली शुक्र होता है। आप कल भी शुक्र आपने देख लिया ना, आपने कौली शुक्र भी देख लिया। अमली शुक्र कैसे होता है कि इंसान उस नेमत को, जिस पे भी वो आप शुक्र अदा कर रहे हैं, उस नेमत को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करें, चाहे वो जुबान है, चाहे वो हाथ पैर है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो जिंदगी है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, जो भी चीजें हैं उनको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसकी फरमा बरदारी में इस्तेमाल करें, उसकी नाफरमानी में नहीं। कि आंखें अपनी मर्जी से ही देख रही, परवाह ही नहीं अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, ये तो वो इसका शुक्र है। ये भी कि वो इसके बावजूद, हमारी इस नाशुक्री के बावजूद इनको छीन नहीं लेता, वरना छीन ले तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से लाओगे। तो ये अमली शुक्र है कि जिसने दिया है। आप उस देखिए, आपको एक कंपनी गाड़ी देती है, आप गाड़ी से कंपनी के ही खिलाफ काम शुरू कर दें, कंपनी आपको घर दे, आप उस घर के अंदर कंपनी के खिलाफ ही प्रोपोगंडा शुरू कर दें, आप वो कंपनी कोई और फैसिलिटीज दे, आप कंपनी को तोड़ने के लिए शुरू कर दें, ये क्या होगा, कोई बर्दाश्त करेगी कंपनी ऐसे। अल्लाह आपको नेमत दे और आप उस नेमत को अल्लाह के खिलाफ ही, उसके हुक्मों के खिलाफ ही यूज करने शुरू कर दे, वो आपको जुबान दे रहा, आप उसी जुबान से कह रहे हैं को खुदा नहीं है, को नहीं, मैंने नहीं उसकी माननी, मैंने नहीं उसके हुक्मों पे चलना, ये क्या है, नाशुक्री ही तो है। अब वो नाशुक्री कर रहे होते हैं, कहते हैं हम बड़े शुक्र गुजार हैं। तो क्या हुआ, अब इस बस्ती के साथ क्या हुआ, इन्होंने अल्लाह की नाशुक्री की, समझ आ गई आप नाशुक्री की, हर तरह से ही नाशुक्री की, ना दिल में सोचा, ना जुबान से शुक्र किया, ना अमल में शुक्र लेकर आए। और आप देखें, हमारे लोगों के अंदर ये इतनी नाशुक्री की आदत है, इतनी नाशुक्री की आदत है कि जब उनसे कोई बात करें ना, कोई किसी का इंटरव्यू कर लें, तो वे कहेंगे हाय मारे गए, लुटे गए, फलां हो गया, हम तो वैसे बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, हाय कुछ नहीं रहा हमारा, हमारे पास तो कुछ है नहीं, हाय हाय हम गरीब, हाय हम ये, हाय हमारा, हर वक्त नाशुक्री, हर वक्त नाशुक्री। कभी नहीं आप किसी को कहेंगे देखते हुए के देखेंगे नहीं कहते हुए कि वो कहे कि शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बड़ा अच्छा रखा, आपके सब छत के नीचे रह रहे हैं, अमन में रह रहे हैं, हर एक के पास, इवन एक मजदूर तक के पास, एक गरीब तक के पास उस दिन का खाना मौजूद है, और खाना ये नहीं कहा कि बादशाहों वाला खाना, ऊत का लफ्ज है उतना, जिससे बस जिंदगी का तार चलता रहे, मौत से बच जाए, इतना तो सबके पास है, हमारे से गरीब लोगों के पास भी है, सेहत भी है, लेकिन फिर भी अल्फाज मुंह से निकलते हैं तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं निकलता, हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत। तो फिर होता क्या है, जब इंसान ना शुक्रियों पे उतर आता है और पूरी की पूरी कौमें उतर आती हैं, फअज़ाकहुल्लाहु लिबास अल्जुई वल खौफ बिमा कानू यसनाउन, तो अल्लाह ताला ने चखा दिया उनको भूख का लिबास और खौफ का, और वो जो वो करते थे उसकी वजह से, जो इन्होंने खुद ही जो ये इन्होंने काम किए इनकी वजह से, जब कौमें नाशुक्री हो जाती हैं ना, और फिर देख लें जो भी उनके पास नेमते हैं वो सारी अल्लाह की नाफरमानी में ही लग रही हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि भूख भी आती है और खौफ भी आता है, महंगाई और ऐसी ऐसी चीजें लोगों के लिए अफोर्ड से बाहर हो जाती हैं लोगों के, और फिर या कहत साली पड़ जाती है, या ऐसी चीजों की कमी होने लगती है, बाजार में चीज नहीं मिलती, तो भूख का भी और खौफ, दुश्मन का खौफ, इस तरह का खौफ, जान का खौफ, माल का खौफ, इज्जतों के खौफ, जराइम बढ़ जाते हैं इस तरह, ये सारी चीजें फिर नतीजा है इस नाशुक्री का। समझाए, तो अल्लाह ताला ने उनको भूख का लिबास पहना दिया, यानी एक कैसी एक फीलिंग बताई ना, कि लिबास की एक होती है ना, फील होती है जिस्म के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने ये एक फीलिंग बताई कि जैसे लिबास इंसान को चारों तरफ से लपेट लेता ना, इस तरह भूख उनको ढांप लेती है, भूख ढांप लेती है, फिर उनको ये नहीं सोचते कि इसके पीछे हमारी अपनी नाशुक्री है, ये हमारे अपने करतूत है, कि किसी जगह पे चीजें इतनी कहत साली का सालम हो जाए, चीजें की इतनी शॉर्टेज हो जाए, बाजार में चीज नहीं मिल रही, भूख भूखे मर रहे हैं, या खौफ का आलम हो गया, और उनको अल्लाह ताला ने फिर ये चखाया था, मक्का वालों को उनके ऊपर कहत आ गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी, कहत आ गया उनके ऊपर, फिर आपकी दुआ से वो कहत दूर हुआ था, और खौफ खौफ ऐसे हो गया था, बदर में देखें कितना इनको जानी नुकसान हुआ था, कि बड़े बड़े मारे गए थे, तो उनके रेफरेंस से देखें तो तब भी आपको बात समझ आएगी, और एक आम उससे देखें तो एक बतौर मिसाल इसको समझे, ये रहती दुनिया तक है, जो बस्ती ऐसा करेगी उसके साथ उसकी नाशुक्री की सजा अल्लाह ताला उसको दुनिया में देता है इस तरह। लिहाजा जिनके पास ये नेमते हो वो ऑलवेज शुक्रगुजारी में रहे, वरना अल्लाह ताला चाहे तो ये सजा उनके ऊपर मुसल्लत कर दे, फिर बाद में जो रोते हैं उसका फायदा नहीं, तो ये अल्लाह का कानून है। बात समझ आ गई आपको, नाशुक्री के सजा दुनिया में भी मिल जाती है, आफतों की सूरत में, भूख और खौफ की सूरत में, तो ये क्योंकि बस्ती की बात है, इंडिविजुअल भी करते हैं नाशुक्री, लेकिन जब बस्तियां करती हैं तो फिर ये होता है, सारी बस्ती के ऊपर ही भूख और खौफ। वलकद जाअहुम रसूल मिनहुम फकद्दबूहु, इनके पास अल्लाह के रसूल आए, इन्होंने जुटलाया उनको, फ़ाख़ज़हुमुल अज़ाबु वहुम ज़ालिमून, तो इनको अजाब ने पकड़ लिया और वो जालिम थे, यानी मक्का की बस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने जुटलाया, नबी भी तो एक नेमत होता है, रसूल को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वो अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने नबी भेजा, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का एहसान है कि उसने उन इनके अंदर से ही नबी को उठाया, तो ये अल्लाह ताला इसको एक नेमत गिनवाते हैं रसूल के आने को, मिन हम इन्हीं में से, इनकी कौम में से आए, फिर भी इन्होंने माना नहीं, तो फिर ठीक है, इनके ऊपर अजाब आया, ये इस चीज की सजा, भूख का भी और खौफ का भी, और ये जालिम थे, अल्लाह ने इनके ऊपर जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया। अल्लाह ताला हमें शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अपने उन बंदों में शामिल करे जो हमेशा उसके सामने झुकने वाले और उसकी नियमतों की कदर करने वाले और शुक्रगुजार हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون